हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 12 श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधु वर्गेनया कल्पिता। श्रीमद् भागवतं प्रमाणममालं प्रेम पुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापरा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरवति नैष्टिकीं पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। अध्याय सिकंद 3 और अध्याय 12 जिसका शीर्षक है कुमारों तथा अन्यों की सृष्टि। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी से कहा, हे विद्वान विदुर, अभी तक मैंने तुमसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्य स्वरूप की महिमा की व्याख्या की है। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना मृत्यु का भाव, हताश के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमयी शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। जब ब्रह्मा जी ने इन सब अविद्याओं को, मोह को, हताश क्रोध और इस विस्मृति, भगवान से विस्मृति वाली सारी वस्तुओं को बनाया, तो ब्रह्मा जी के मन में बहुत खेद होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। इस तरह से तो जीव जो हैं वो भगवान से बहुत दूर चले जाएंगे, और इस तरह से ब्रह्मा जी को कोई संतुष्टि या कोई प्रसन्नता नहीं हुई इन वस्तुओं को बनाने की, लेकिन क्योंकि जीव की अपनी इच्छा थी और भगवान उस जीव की इच्छा पूरा करने के लिए इस भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, तो आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं श्लोक नंबर 3 में, दृष्ट्वा पापियसीम सृष्टिम नात्मानं बहुमन्यत भगवध्यानपूतेन मनसान्यां ततो सृजत। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा मतलब देखा, किसको? पापी यसीम, यानी जो पापमय सृष्टि अर्थात सृष्टि को। ये पाप, सबसे बड़ा पाप यही तो है कि हम भगवान को भूल जाएं, भगवान से दूर चले जाएं, मोहमय अवस्था अविद्या। तो ऐसी सृष्टि को जब ब्रह्मा जी ने देखा, नात्मानम, न मतलब नहीं, आत्मानम यानी स्वयं को, बहु अत्यधिक हर्ष, अमन्यता अनुभव किया, मतलब हर्ष अनुभव नहीं किया, मतलब थोड़ा सा खेद उनको मन में होने लगा, थोड़ा सा दुख होने लगा, खुशी नहीं हुई उनको। भगवत ध्यान पूतेन, भगवत यानी भगवान का, ध्यान यानी ध्यान, पूतेन उसके द्वारा शुद्धि। हृदय के अंदर जब भी कोई अपवित्रता आती है, जब भी कोई गलत कार्य करने का खेद उत्पन्न होता है, दुख जैसा लगता है, अशांति उत्पन्न होती है, तो उसको दूर करने का तरीका बता रहे हैं भगवत ध्यान पूतेना। केवल एक ही तरीका है, जब हम भगवान के ध्यान को अपने हृदय में लेके आएंगे, जब हृदय से भगवान का ध्यान करेंगे, मुख से भगवान का उच्चारण करेंगे नाम का, तभी हृदय और मुख और जीवन संतुष्ट एवं पवित्र हो जाएगा। पूतेना यानी शुद्धि, मनसा का मतलब है मन से, अन्यम यानी दूसरा, ततो सृजत, ततो मन तत्पश्चात, सृजत यानी उत्पन्न किया। अब यही सृष्टि करने के बाद उनको अच्छा नहीं लगा जरा भी, भगवान का ध्यान किया, मन और हृदय की शुद्धि भगवान के ध्यान के द्वारा हुई, उसके बाद क्या किया, मनस्याम ततो सृजत, फिर उन्होंने अपने मन से दूसरी सृष्टि प्रारंभ की। अनुवाद देखिए, ऐसी भ्रामिक सृष्टि को पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष का अनुभव नहीं हुआ, अतः उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझा रहे हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी ने विभिन्न प्रकार की अविद्याओं की सृष्टि की, किंतु वे ऐसे अप्रशंसित कार्य को संपन्न करके संतुष्ट नहीं थे। उन्हें यह कार्य इसलिए करना पड़ा क्योंकि अधिकांश बदात्माएं ऐसा चाहती थीं। भगवान कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कथन है कि वे सबों के हृदय में उपस्थित हैं और हर एक को स्मरण करने या भुलाने की में सहायता करते हैं। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि सर्व दयामयी भगवान एक की सहायता स्मरण रखने में और दूसरे की विस्मरण करने में क्या क्यों करते हैं? वस्तुतः उनकी कृपा एक के प्रति पक्षपात के रूप में तथा दूसरे के प्रति शत्रुता के रूप में प्रदर्शित नहीं होती। भगवान के अंश स्वरूप में जीव अंशतः स्वतंत्र है क्योंकि उसमें भगवान के समस्त गुण अंशतः पाए जाते हैं। जिस किसी के पास थोड़ी सी भी स्वतंत्रता होती है, वह अज्ञानवश उसका दुरुपयोग कर सकता है। अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने को अच्छा मानकर अविद्या में जाने लगता है, तो सर्वदयालु भगवान सर्वप्रथम उसको पाप से बचाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु जब जीव नरक की ओर गिरते जाने पर उतारू हो जाता है तो भगवान उससे उसकी असली स्थिति को बुलाने में सहायता करते हैं। भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह सुखी है कि नहीं। श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर रीति से जीव के हृदय की जो लालसा है उसके विषय में बताया, क्योंकि भगवान सबके लिए सुहृद है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, तो भगवान हृदय के अंदर रहते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मैं तो बहुत पवित्र भक्त हूँ, मुझे तो संसार के इस प्रपंच में कोई आनंद नहीं आता है, मुझे तो आपकी भक्ति करनी है, ऐसे मुख के शब्दों से भगवान रीझने वाले नहीं है, क्योंकि वो हृदय में रहते हैं ना, तो हृदय का भाव जानते हैं। पहले तो हृदय में ये शिक्षा देते हैं, हृदय के अंदर भगवान चैत्य गुरु के रूप में हर एक जीव को शिक्षा देते हैं कि आपका जीवन तभी आनंदित होगा जब तुम्हारा संबंध मुझसे जुड़ेगा। लेकिन जीव जब अपने आप को इस भौतिक गंदगी में गिराने पर उतारू हो जाता है तो भगवान कहते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, जीव को जिस जिस वस्तु की आवश्यकता होती है या जिस जिस की इच्छा होती है वैसा ही उसे प्रदान करता हूँ, विस्मृति भी प्रदान करता हूँ ताकि वो मुझे भूल कर गिरने वाले। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान गिरने वाले जीव को सबसे निचले बिंदु तक गिरने में सहायता करते हैं, जिससे वह देख सके कि अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह सुखी है कि दुखी। एकदम नीचे से नीचे तक गिराते जाएंगे, लेकिन भगवान जो है वो उस डोरी को छोड़ते नहीं है कभी भी। जीव की को गिरने के लिए स्वतंत्र तो कर देते हैं वो, लेकिन फिर भी डोरी का एक हिस्सा अपने पास ही रखते हैं कि आज नहीं तो कल ये जीव अवश्य मुड़कर मेरे पास आएगा। तो पूरी स्वतंत्रता है जीव को भगवान ने दी हुई है, और स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी जब सर्कमटेंसेस भी दिए जाएं। अगर जीव को भगवान ये आदेश दे रहे हाँ ठीक है तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम मेरे पास आकर मेरी भक्ति नहीं करना चाहते हो तो चले जाओ बहिरंगा शक्ति में, लेकिन इस भौतिक जगत में मोह ना हो, अविद्या ना हो, भ्रांति ना हो, शरीर को मैं मानने की वासना ना हो और भौतिक वस्तुओं से आनंद लेने की इच्छा ना हो तो कैसी स्वतंत्रता। फिर भी यदि भौतिक जगत में आने के बाद भी जीव को बाध्य कर दिया जाए कि नहीं तुमको भगवान को याद करना और कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये तो स्वतंत्रता नहीं हुई। भगवान इतने करुणामयी हैं कि जीव को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि उसे ये रियलाइज हो सके कि उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वो कितना कष्टमय जीवन गुजार रहा है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस जगत में सड़ रहे प्रायः सारे बद्ध जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अतः उन पर पांचों प्रकार की अविद्याएं थोप दी जाती हैं। अभी यहाँ पर हम जितने भी जीव हैं, श्रील प्रभुपाद जी बोले सड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो ये सारी अविद्याएं उनके ऊपर थोप दी जाती हैं। ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञाकारी सेवक के रूप में अविद्या को आवश्यकताओं के रूप में उत्पन्न करते हैं, किंतु ऐसा करते हुए वे प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि भगवत भक्त किसी को उसके असली पद से नीचे
गिरता हुआ नहीं देखना चाहता। जो व्यक्ति साक्षात्कार के मार्ग में मार्ग की परवाह नहीं करते, उन्हें भगवान उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भर कर करने देते हैं और ब्रह्मा जी उसमें निश्चित रूप से सहायक बनते हैं। श्री प्रभुपाल जी बोलते हैं, कोई भी भक्त कभी भी इस बात से खुश नहीं होता कि जीव अपने वास्तविक पद से नीचे गिरे और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की परवाह ना करे। और इसलिए भगवान जो है वो उनकी दुष्प्रवृत्तियों को जी भरकर करने देते हैं, उनको सहायता प्रदान करते हैं कि कर लो, जितना तुम्हें भोग करना है भौतिक जगत में करके देख लो। और फिर ऐसा कार्य करने के लिए ब्रह्मा जी सहायक बनते हैं। और इतना जब सृष्टि हो गई और ब्रह्मा जी का मन अशांत हो गया, अपने हृदय को भगवान के ध्यान से शुद्ध करके उन्होंने अपने मन से जो सृष्टि की उसके विषय में आगे बताते हैं। वे कहते हैं, सनकम च सन्नधम च सनातनम अथात्म भू सनत कुमारम च मुनी निष्क्रिया नूद्वरेतस सनकम च सनंदम। सनक और सनंदम च सनातनम, च सनातन यानी और सनातन, अथ तत्पश्चात, आत्मभू स्वयंभू यानी ब्रह्मा जी, सनत कुमारम च मुनीन, सनत कुमार भी मुनीन यानी मुनिगण, निष्क्रियान यानी समस्त सकाम कर्मों से मुक्त, ऊर्ध्वरेता इन चार कुमारों के विषय में बताया जा रहा है जिनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। तो अब ब्रह्मा जी ने अपने मन से इन चार चतुष कुमार का को उत्पन्न किया। वो कौन है अनुवाद देखिए। सर्वप्रथम ब्रह्मा ने चार महान मुनियों को उत्पन्न किया जिनके नाम सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार हैं। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्थ थे। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्योंकि वो चार कुमार जो थे वो उनको भौतिक कोई भी इच्छा थी ही नहीं, वे सब प्रकार के भौतिकतावादी कार्यकलापों से दूर थे, उनको ग्रहण करने अनुच्छुक थे और फिर वो ऊर्ध्वरेता थे यानी उनका वीर्य ऊपर की ओर प्रवाहित होता था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि ब्रह्मा ने अविद्या के सिद्धांतों की सृष्टि उन जीवों की आवश्यकता के रूप में की जिनके भाग्य में भगवान की इच्छा से अविद्या बदी थी, किंतु वे ऐसा अप्रशंसित कार्य करके संतुष्ट नहीं थे। इसलिए उन्होंने ज्ञान के चार सिद्धांतों की सृष्टि की। ये हैं सांख्य योग, वैराग्य तथा तप। सांख्य योग भौतिक अवस्थाओं के वैश्लेषिक अध्ययन के लिए अनुभवात्मक दर्शन है। योग भावबंधन से शुद्ध आत्मा को मोक्ष दिलाने के लिए है। वैराग्य उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान तक ऊपर उठने के लिए जीवन में भौतिक भोग से पूर्ण विरक्ति को स्वीकार करना है। और तप आध्यात्मिक सिद्धि के लिए विभिन्न प्रकार की
स्वेच्छा से की गई तपस्या है। ब्रह्मा ने सनक सनंदन, सनक सनंत सनातन तथा सनत की इन चार मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन चार सिद्धांतों को सौंपने के लिए की और उन्होंने अपनी निजी संप्रदाय चलाया जो भक्ति की उन्नति के लिए कुमार संप्रदाय अथवा बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाता है। ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि ब्रह्मा जी अब संसार में क्योंकि अविद्या ही अविद्या थी इसलिए उन्होंने ज्ञान का प्रकाश साथ में बांटा और ये चार कुमार जो कि ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे उनको उत्पन्न किया ताकि जो जीव भगवान की ओर जाना चाहते हैं उनको वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सके। ब्रह्मा जी ने चार कुमार सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार इन मुनियों की रचना आध्यात्मिक उन्नति के इन चार सिद्धांतों को सौंपने के लिए की और उन्होंने अपना निजी संप्रदाय चलाया। ब्रह्मा जी ने भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन चार कुमारों को ज्ञान दिया और इससे कुमार संप्रदाय जो है वो स्टार्ट हुई और कुमार संप्रदाय जो के बाद में निम्बार्क संप्रदाय कहलाया है। तो ये सभी महान मुनिगण महान भक्त बने, जो चार कुमार हैं वो महान भक्त बने क्योंकि भगवान की भक्ति के बिना आध्यात्मिक महत्व के किसी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। पहले तो ये चारों कुमार जो है वो निराकारवादी थे लेकिन आगे चलकर भगवान के दर्शन करके वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। आगे मैत्रेय मुनि बताते हैं, तान बभाषे स्वभू पुत्रान प्रजा स्रजत पुत्रिका तन्ने चन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण तान बभाषे स्वभू पुत्रान प्रजा स्रजत पुत्र का तन्नैचन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण तान बबाशे स्वभू पुत्रान तान मना उन कुमारों से जिनका उल्लेख ऊपर हो गया उनको यानी चार कुमारों को बबाशे कहा। किसने? स्वभू ब्रह्मा ने। क्या किनसे कहा? पुत्रान अपने पुत्रों से। प्रजा सृजत पुत्र का प्रजा मना संताने सृजत यानी सृजत करने के लिए पुत्र का ए मेरे पुत्रो तन्नय छन मोक्ष धर्माणो तन यानी वह न नहीं ए छन चाहते हुए मोक्ष धर्मा मोक्ष के सिद्धांतों के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध वासुदेव परायण वासुदेव अर्थात भगवान के प्रति परायण यानी अनुरक्त। यहाँ मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने तो अपने पुत्रों को क्या कहा? स्वभु पुत्रान प्रजा सृजति पुत्र का कि अब आपको प्रजा का सृजन करना है लेकिन उन पुत्रों की तान नीचन मोक्ष धर्माण वो तो मोक्ष धर्म के सिद्धांत को मानते थे उनको पता था कि ये सृजन करना फिर उनके प्रति आकर्षण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। वो उसी टाइम पर अपने पिताजी को कहते हैं कि हम तो भगवान की भक्ति करेंगे वासुदेव परायणा इसलिए हमको इस झंझट में सृजन के कार्य में नहीं लगना है। शिला प्रभुपाद अनुवाद देखिए, पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा ने उनसे कहा, पुत्रों अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था। तन्ने चन मोक्ष धर्माणा, उनकी इच्छा थी कि हम बंधन से मुक्त हो जाए, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपना लक्ष्य मोक्ष बना रखा था, अतएव उन्होंने अपनी अनिच्छा प्रकट की। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्मा के चारों पुत्रों कुमारों ने अपने महान पिता ब्रह्मा के अनुरोध करने पर भी गृहस्थ बनने से इनकार कर दिया। जो लोग भव बंधन से छुटकारा पाने के लिए तत्पर हैं, उन्हें मिथ्या पारिवारिक बंधन में नहीं बंधना चाहिए। लोग यह पूछ सकते हैं कि कुमारों ने अपने पिता विशेषकर ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा के आदेशों से इनकार क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि जो वसुदेव परायण है, वासुदेव परायण, अर्थात जो भगवान वसुदेव के भक्ति में गंभीरता पूर्वक लगे हुए हैं, उन्हें अन्य किसी कार्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत 11.5.41 में आदेश है कि देवर्षि भूताप्त निर्णाम पितृणाम न किं करोनायम ऋणी चराजन सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्मम्। अर्थात जिस किसी ने भी समस्त सांसारिक बंधनों संबंधों का परित्याग कर दिया है और उन भगवान के शरण कमलों की पूर्ण शरण ले रखी है, जो हमारे मोक्ष दाता हैं और एकमात्र शरण ग्रहण करने के योग्य है, वह किसी का ना तो ऋणी है ना ही किसी का दास है। चाहे वो देवता हो, पितृ हो, मुनि हो, संबंधी हो या अन्य जीव, संबंधी तथा मानव समाज का सदस्य क्यों न हो। इस तरह जब कुमारों ने अपने पिता, अपने महान पिता के इस अनुरोध को ठुकराया कि वे गृहस्थ बन जाएं, तो उनके इस कार्य में कोई त्रुटि न थी। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है कि जब कोई वासुदेव परायण हो जाता है, पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करता है और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, फिर वो यदि वैसे तो अपने माता पिता की आज्ञा पालन करना जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, लेकिन वो नहीं, लेकिन अगर कोई भगवान को संतुष्ट करना चाहता है तो उसको दूसरा कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम, वो किसी का किंकर नहीं रहता, किसी का ऋणी नहीं रहता, ना देवताओं का, ना भूतों का, ना पितरों का, वो केवल भगवान की भक्ति करके सारे ऋणों से मुक्त हो जाता है। लेकिन जब ब्रह्मा ने देखा कि मेरी संतान मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रही है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया और मैत्रेय मुनि कहते हैं, सोवध्यातः सुतेरेवम् प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधं दुर्विषहं जातम् नियन्तु मुपचक्रमे। सो व्यध्यातः, सो मन वह यानी ब्रह्मा, अवध्यातः इस प्रकार अनादर, उनकी अवज्ञा की गई थी, अनादर हुआ था, पिता ने आदेश दिया और पुत्रों ने मना कर दिया, तो इस प्रकार अनादर होकर सुत है, किसके द्वारा, पुत्रों के द्वारा, एवं इस प्रकार प्रत्याख्यात यानी आज्ञा मानने से इनकार किया, अनुशासने अपने पिता के आदेश से क्रोधम दुर्विषहम जातम, क्रोधम यानी क्रोध, दुर्विषहम यानी असहनीय, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया, जातम यानी उत्पन्न हुआ। लेकिन नियंतुम, नियंतुम मतलब नियंत्रण करने के लिए, उपचक्र में भरसर प्रयास किया। उनको क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने देखा कि ये मेरी बात नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी तो भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं ना, कोई गलत कार्य करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं। तो नियंतुम, उन्होंने बहुत कोशिश की अपने क्रोध को दबाने की। अनुवाद देखिए, पुत्रों के द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिससे उन्होंने व्यक्त ना करके दबाए रखना चाहा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भौतिक प्रकृति के रजोगुण के प्रभारी निदेशक हैं, अतएव अपने पुत्रों द्वारा अपने आदेश का उल्लंघन होने पर उनका क्रोध होना स्वाभाविक था। यद्यपि कुमारों द्वारा ऐसे कार्य से इनकार किया जाना उचित था, किंतु रजोगुण में लीन होने के से ब्रह्मा अपना आवेशपूर्ण क्रोध रोक नहीं सके, किंतु उन्होंने उसे व्यक्त नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पुत्र आध्यात्मिक उन्नति में अत्यधिक प्रबुद्ध हैं, अतः उन्हें उनके समक्ष अपना क्रोध व्यक्त नहीं करना चाहिए। लेकिन क्रोध कितना ही रोकने की कोशिश की, मगर फिर भी आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, दियानि गृहमाणोऽपि ब्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायत तन्मन्यु कुमारो नीललोहित। दिया, दिया मतलब बुद्धि से। कुमार कहाँ से उत्पन्न हुए थे? मन से। और दिया मतलब बुद्धि से निगृहमाणा, निगृहमाणा मतलब नियंत्रित करते हुए, अपि उसके बावजूद भी, ब्रुवो, ब्रुवो मतलब भुवों के, जो आईब्रोज होते हैं उनके मध्यम यानी बीच से, प्रजापते यानी ब्रह्मा के, अपनी बुद्धि से क्रोध को नियंत्रण करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी के भवों के मध्य से सद्य तुरंत ही अजायता, अजायता मतलब उत्पन्न हुआ तत् उसका मन्यु क्रोध कुमार यानी बालक नील लोहित अर्थात नीले तथा लाल का मिश्रण। अनुवाद देखिए, यद्यपि उन्होंने अपने क्रोध को दबाए रखने का प्रयास किया, किंतु वह उनकी भावों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही नील लोहित रंग का बालक उत्पन्न हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, क्रोध चाहे जानकर प्रकट किया जाए या अनजाने में, उसकी मुखाकृति वही रहती है। यद्यपि ब्रह्मा ने अपना क्रोध नियंत्रण करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। तभी जबकि वे सर्वोच्च पुरुष हैं, ऐसा क्रोध ब्रह्मा की भवों के बीच से रुद्र के जन्म में उत्पन्न अपने सही रंग में प्रकट हो आया, जो नीले यानी तमो तथा लाल यानी रजो रंग का मिश्रण था, क्योंकि क्रोध रजो तथा तमो गुणों की उपज है। ब्रह्मा जी संसार का सृजन करने के लिए उनका उत्पन्न हुए हैं, तो वो रजोगुण के देवता माने जाते हैं, और जैसे उनके भावों से जो रुद्र उत्पन्न हुए वो नील लोहिता, नील कहते हैं तमोगुण को, और लाल अर्थात रजोगुण का मिश्रण है। तो तमो और रजोगुण का मिश्रण, क्योंकि क्रोध जो है वो तमोगुण के रियलिटी को भूल जाए, और रजोगुण मतलब इच्छा उत्पन्न हो, तो इसलिए रुद्र उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के साथ ही वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। मैत्रेय मुनि कहते हैं, सवै रुरोदधीवानां पूर्वजो भगवान् भवा नामानि कुरु मे धात स्थानानि च जगत् कुरु। सवै रुरोद देवानाम, स मन वह, वै मन निश्चय ही, रुरोद जोर जोर से चिल्लाया। जैसे ही भवों से नीचे उत्पन्न हुआ पहले तो फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। रुरोद देवानाम पूज पूर्ज वजह अर्थात समस्त देवों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को कहने लगे, हे समस्त देवों में श्रेष्ठ भगवान भव, भगवान यानी अत्यंत ही शक्तिशाली भव यानी शिव जी, वे कहते नामानी कुरु में धात, नामानी यानी विभिन्न नाम, कुरु मने रखो, नाम रखो, मैं यानी मेरे धात, हे भाग्य विधाता कि अभी मैं पैदा हो गया हूं तो कृपा करके मेरे नाम रखो, और स्थानानी च जगत गुरु, और मुझे स्थानानी मने स्थान भी बताओ जगत गुरु, हे ब्रह्मांड के शिक्षक। अनुवाद, जन्म के बाद वह चिल्लाने लगा, हे भाग्य विधाता, हे जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम तथा स्थान बताइए। मतलब मुझे आपने पैदा किया है तो आप मुझे बताओ मेरा नाम क्या है और मुझे कहाँ रहना है। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, इति तस्य वचः पात्मो भगवान् परिपालयन् अप्यधा भद्रया वाचा मारोदिस्तत्करोमि ते। इति तस्य वच पद्मो, इति मन इस प्रकार, तस्य मन उसके यानी रुद्र ने जब इस प्रकार से वच यानी याचना, पद्म यानी कमल के फूल से उत्पन्न हुआ भगवान यानी शक्तिशाली परिपालयन यानी याचना स्वीकार की। तो कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने जब देखा कि वो इस तरह से याचना कर रहा है तो उन्होंने परिपालन उनकी याचना को स्वीकार किया। अभ्यदात भद्रया वाचा, और अभ्यदात का मतलब होता है शांत किया। अब चुप करो बताता हूँ आपका नाम क्या है, आपका स्थान क्या है, उसको शांत किया। भद्रया यानी मृदु, वाचा यानी शब्दों से, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से उसको चुप कराया। मा रोदिता, मा मन मत, रोदिता मतलब रो नहीं, आप चिल्लाओ नहीं। तत् करोमी ते, मैं वैसा ही करूंगा। तत् मन वह, करोमी यानी करूंगा, ते जैसा तुम चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा स्थान बताओ, मैं बताता हूँ, आप चुप करो, ऐसे ब्रह्मा जी ने रुद्र को बोला। हनुमान, कमल के फूल से उत्पन्न हुए सर्वशक्तिमान ब्रह्मा ने उसकी याचना स्वीकार करते हुए मृदु वाणी से उस बालक को शांत किया और कहा, मत चिल्लाओ, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। यदरोदी सुर श्रेष्ठ सोद्वेग इव बालक ततस्त्वाम विदास्यन्ति नाम्ना रुद्र इति प्रजा। यद रोदी, यद मन जितना, अरोदी मतलब जोर से रोया, सुर श्रेष्ठ हे देवताओं में प्रधान, स उद्वेग अत्यधिक यातना अत्यधिक चिंता सहित एव सदृश बालक यानी बालक, क्योंकि बालक जैसे उत्पन्न हुआ तो जोर जोर से रोया था बालक। ततः तत्पश्चात त्वाम, तुमको अभिदास्यन्ति पुकारेंगे नाम 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 लेकर रुद्र इति इति इस प्रकार प्रजा यानी लोग। तो ब्रह्मा जी ने उसको कहा कि आपने तो, क्योंकि वो जोर जोर से रोया ना, अभी आपको सब लोग रुद्र पुकारेंगे, नाम बता रहे। अनुवाद देखिए, तत्पश्चात ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र नाम से जाने जाओगे, क्योंकि तुम इतनी उत्सुकता पूर्वक चिल्लाए हो। तो ब्रह्मा जी ने पहले चार कुमारों की सृष्टि की और उन्हें आदेश दिया कि आपको सृष्टि की संसार की सृष्टि के लिए मेरी सहायता करनी है। उन्होंने मना कर दिया तो ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र का जन्म हुआ और जैसे उन्होंने अपना नाम और स्थान मांगा तो उनको ब्रह्मा जी ने रुद्र नाम दिया। और अब आगे उनको अपने स्थान के विषय में बताएंगे तो वो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबसे एक प्रार्थना है कि मेरा गला बहुत दुख रहा है, कृपया एक बार नरसिंहदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मेरा गला सही हो जाए ताकि मैं अपनी सेवा को बहुत अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्णा।